ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सावन ना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सावनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।
ओम शांति। आदरणीय उर्मिल बहन जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच पधारे, क्योंकि शांतिवन में तो आप भट्टी, बड़ी बड़ी भट्टी के ग्रुप में क्लास कराते हैं, तो आपको तो ये ट्यूशन जैसा लगेगा। तो जैसे ट्यूशन में कोचिंग सेंटर पर पढ़ाने आए हैं उर्मिल बहन जी। चुपचाप जैसे कोई बहुत किसी नींव में पत्थर की तरह चुपचाप सा बहुत बहुत ब्रिलियंट काम बाबा के यज्ञ की सेवा में करते रहते हैं। आप वर्तमान में ज्ञान अमृत पत्रिका के सह संपादिका हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। पिछले लगभग 33 वर्षों से, शायद इससे भी ज्यादा, आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने चंडीगढ़ में भी बहुत वर्षों तक रहकर अपनी बहुत अच्छी लेखनी से भी सेवाएं दी हैं। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में आप तब भी जाकर सेवा करते थे, आज आप पूरे भारतवर्ष में स्थान स्थान पर जाकर अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से प्रभावित करते हैं। उर्मिल बहन बहुत अच्छे चिंतन की स्वामिनी है, बहुत अच्छा चिंतन है आपका। और हम सभी जानते हैं कि ज्ञानामृत पत्रिका में बहुत सेवाएं हो रही हैं, और उसके साथ साथ उसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स अनुभवों के आते हैं, तो उनका बहुत अच्छा संयोजन करना, चुनना, उसका लिखना, ये सब कार्य आप शांतिवन में रहकर कर रहे हैं। हम चाहेंगे संकल्पों में दृढ़ता कैसे आए, ये आप हमारे सामने आज खोलकर विस्तार से रखेंगे, क्योंकि संकल्पों से हम सृष्टि बनाने जा रहे हैं, वो भी सतयुगी सृष्टि। अगर संकल्प ढीले हैं तो उस दीवार में ईंटें ढीली ढीली लगेंगी, और जो ढीली ईंटों वाली दीवार होगी तो उसका क्या हाल होगा। तो इसीलिए संकल्पों में दृढ़ता कैसे आए, आदरणीय उर्मिला बहन जी हमारे बीच आज इस विषय पर, नीमच के ये सब भाई बहन है, आप इन सबके ग्रुप के सामने अपने विचार, अपने समझाने, अपनी शिक्षाएं और बाबा से मिली हुई प्रेरणाएं हमारे बीच देंगे आदरणीय उर्मिला बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार मम्मा से पूछा गया था कि जितने भी दैवी गुण हैं सारे बहुत जरूरी हैं, लेकिन फिर भी सारे दैवी गुणों में अगर एक गुण को चुनना हो और सारे गुणों का उसे राजा कहा जाए तो वो कौन सा है। तो मम्मा ने उत्तर दिया था कि दृढ़ता ही सारे गुणों का राजा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता ना आए तो वो कोई भी धारणा कर नहीं पाता। सोचता तो है कि मैं करूं, चाहता भी है, दूसरे को बताता भी है, लेकिन टिक नहीं पाता अपने उस संकल्प पे तो सफलता नहीं मिलती है। दुनिया में लोग कहती हैं कि अमुक आदमी बहुत जल्दी टॉप पे पहुंच गया। आजकल लोग तीव्र गति से टॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन टॉप पे टिकने के लिए दृढ़ता चाहिए, नहीं तो जिस गति से ऊपर जाते हैं उसी गति से फिसल भी जाते हैं। स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए हमें दृढ़ता चाहिए। कई बार मनुष्य मन में ऊंची ऊंची योजना बनाता है और कहता भी है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि ये हो कैसे गया, मैं फिसल कैसे गया। जैसे महात्मा बुद्ध के एक चेले की बात सुनाते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था, मैं 2 बजे उठता हूँ, इतनी मालाएं फेरता हूँ, इतने मंत्र जपता हूँ, मुझे इतने मंत्र याद हैं, सबके आगे ऐसे बोला करता था। तो एक बार बुद्ध के आगे ये बात पहुंची तो उसको बहुत दया आई। दया इसलिए आई कि जो व्यक्ति केवल कहता है और करता नहीं है वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा, वो एक धोखे में रहेगा, अल्यूजन में रहेगा। तो मुझे इसको इस धोखे से छुड़ाना है। तो एक बार बुद्ध ने उसे अपने साथ लिया और एक यात्रा पे जा रहे थे दोनों। तो रास्ते में बहुत सारी गौएं जा रही थी, उस जमाने में पशु धन बहुत बड़ा धन माना जाता था, और जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पशु धन है वो उतना ही अमीर। तो एक व्यक्ति के पास 500 गायें, 1000 गायें ऐसी भी होती थी। तो सड़क पे, रास्ते पे बहुत गौएं जा रही थी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उस चेले को कहा, देखो तो ये कितनी गौएं हैं, जरा गिनती करो। तो गिनने में तो बहुत होशियार था वो। तो उसने कहा, भंते ये 480 गोएं हैं। तो बुद्ध ने पूछा, अच्छा क्या गिनती करने भर से ये गोएं तुम्हारी हो गई? कहता, नहीं भंते। तो बोला, अगर गवों को अपना बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोला, गवों को अगर अपना बनाना है तो इनके लिए चारे का प्रबंध करना, इनकी शेड का प्रबंध करना, इनके लिए कई सारे सेवक रखना, पानी, छाया, जमीन, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा कि तुम जो रोज कहते हो कि मैंने इतने मंत्र जपे, मैंने इतनी मालाएं फेरी, मैं इतना जल्दी उठा, तो क्या कहने मात्र से मंत्र तुम्हारे हो गए? क्या कहने मात्र से मालाएं तुम्हारी हो गई? क्या कहने मात्र से तुम साधना के स्वरूप हो गए? जैसे गवों को अपना बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, गिनने से गवें अपनी नहीं बनती, ऐसे ही साधना के मंत्र गिनने से वो अपने नहीं बनते, उन्हें मेहनत करके जीवन में धारण करना पड़ता है। तो उसको समझ में आए। तो ऐसे ही हम केवल वर्णन करें, सुनाएं, उससे कोई भी धारणा हमारी अपनी नहीं बन जाती, कूट कूट के अपने भीतर डालनी पड़ती है। जैसे पुराने जमाने में तो मकान बनाने के लिए नींव में पत्थर कूटे जाते थे, तो कूटने के लिए कितनी बार हथौड़ी मारनी पड़ती थी, ना ही वो बारीक बनता था, उतना ही नींव मजबूत बनती थी। आप किसी बोर्ड पे एक लाइन लगाओ तो वो थोड़ी सी दिखेगी, लेकिन उसको चौक से गहरा करते जाओ, चौक फिराते जाओ, फिराते जाओ, फिराते जाओ, तो कितनी डार्क हो जाती, दूर से दिखाई देती। तो जब हम कोई भी संकल्प एक बार करते हैं तो वो संकल्प की शक्ति कम होती है, लेकिन जब उसी संकल्प को मन में दोहराते रहते हैं, मुझे करना ही है, मुझे ये काम करना ही है, जिसको कहते हैं रात और दिन हमको एक ही बात दिखती है, मुझे ये करके ही छोड़ना है, जब तक ये होगा नहीं तब तक मुझे आराम नहीं करना है, मुझे ये काम करना ही करना ही, उसको कहते हैं दृढ़ता। लेकिन एक बार एक बात सोची, हाँ मुझे करना, और हम उससे फिसल गए। फिर दूसरी बात की तरफ ललचा उठे, मुझे ये भी करनी है। फिर तीसरी की तरफ ललचा उठे, यहाँ ये भी करनी है। तो अच्छी तो हमें सारी बातें लगती है, लेकिन हम कर एक को भी नहीं पाते हैं। आप सबने सुना है कि पुराने जमाने में भाप के इंजन होते थे और ट्रेन भाप से चलती थी। आज भी कई ट्रेनें चलती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगी है। लेकिन आजकल भाप से हमारी सारी सोलार ऊर्जा, उसमें भाप ही काम करती है। तो पानी की भाप कब बनती है? पानी कितना गर्म होना चाहिए? 100 डिग्री जब गर्म होगा तब भाप बनेगी। मान लीजिए मैंने पानी को 50 तक उबाला, 70 तक उबाला, और मैं कहती हूँ भाप तो बनी नहीं, इंजन तो आगे चला नहीं। मुझे पानी को 100 डिग्री तक उबालना पड़ेगा, इससे पहले काम होगा ही नहीं। तो किसी कार्य को करने के लिए मेरी दृढ़ता कितनी होनी चाहिए? वो 50% है तो काम होगा नहीं, 70% है काम होगा नहीं, 90% है काम होगा नहीं। मेरी वो दृढ़ता 100%, अर्थात उस पे मेरी कंसंट्रेशन, उस पे मेरी आंतरिक शक्ति, मेरा झुकाव, उसके प्रति मेरी लगन 100% चाहिए। मुझे उसके सिवाय कुछ ना दिखे तब वो काम होगा। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। मैं संकल्प को टिकाऊं नहीं, संकल्प से दूसरे तीसरे आनंद लेती रहूं, दूसरी तीसरी चीजों में मन रमाती रहूं, और फिर सोचूं कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। जितनी ऊर्जा लगाऊंगी उतने काम में सफलता मिलेगी। तो सफलता के लिए मेरा विचार कैसा चाहिए? जिसे हम कह सकते हैं फौलादी विचार। विचार में फौलाद जैसी ताकत चाहिए, तब सफलता होती। प्यारे बाबा ने दृढ़ता के ऊपर बहुत मुरलियां चलाई हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मैं देखता हूं कई बार बच्चे जब लौकिक कार्य करने की बात होती है ना, तो कहते हैं करना ही है, और कई बार जब कोई यज्ञ का काम हो, पुरुषार्थ की बात हो, इस रूहानी जगत की कोई सेवा हो, तो कहते हैं करना तो है। दोनों में अंतर है क्या? करना ही है और करना तो है। अब देखिए, करना ही है उसमें क्या लग रहा है? उसमें ऐसे लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी त्यागना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, सहना पड़े, छोड़ना पड़े, लेकिन मेरे को करना ही है। और लौकिक दुनिया में कई बार हम देखते हैं बच्चे का एडमिशन अमुक स्कूल में कराना ही है, कितनी भी फीस देनी पड़े, कितनी भी रिश्वत देनी पड़े, किसी किसी से सिफारिश लगवानी पड़े, कितना भी दूर वो जगह हो, करना ही। अमुक तीर्थ यात्रा करनी है, कितनी भी दूर हो, कितनी भी गर्मी हो, शरीर ठीक हो ना हो, अमुक मकान जगह बनानी ही है, होती है ना दृढ़। और लोग कर लेते हैं। और तो में क्या लगता है? मैं मना थोड़े कर रहा हूं करने से, करना तो है ही। ऐसा थोड़े है कि मैं करूंगा नहीं। मैंने कब कहा कि मैं नहीं करूंगा? करना है, करना तो है ही। तो ना तो उसमें कोई समय सीमा है, ना उसमें कोई लक्ष्य है, बस करना है, कर लेंगे, कभी भी हो जाएगा। और इसके लिए बाबा ने कहा था कि जब किसी भी बात में आगे गे 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 लगती है, तो बाबा ने कहा था देखो जो छोटे बच्चे गूंगे होते हैं ना, वो गा 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 करती है, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं, गा 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 करते रहते हैं। बाबा आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करूंगा, बाबा आप चिंता मत करो, मैं अपने आप को बदल लूंगा, बाबा आप चिंता मत करो, मैं ये धारणा करके ही दिखाऊंगा। तो बाबा ने कहा था कि कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे, गगे गगे करने वाले बच्चे कब तक बने रहोगे। तो अभी तो हमारा यज्ञ भी बहुत बड़ा हो चला, पुराना हो चला, अगर हम ये कहें कि यज्ञ भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश हो गए और हम छोटे बच्चों की तरह गगे गगे ही करते रहे, तो हम अपने संकल्प में दृढ़ता लाएंगे। मान लीजिए हम केवल संकल्प करते हैं और उसे साकार नहीं करते, तो क्या होता है? संकल्प का भी एक वजन होता है, एक बोझ होता है, जैसे कहते हैं ना बातों का बोझ, संकल्पों का भी बोझ होता है, और वो बोझ यहाँ रखा रहता है, याद आता रहेगा। लौकिक दुनिया में आजकल जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो एक ही सवाल लेके आते हैं कि बहन जी हम पढ़ना चाहते हैं, होमवर्क करना चाहते, पेपर की तैयारी करना चाहते, सोचते ही रहते ये वाला चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स का वो वाली सम हल करनी है, ये वाला न्यूमेरिकल हल करना है, यहां रखी रहती हैं बातें, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं है तो क्या होता है, सारी किताबें यहाँ रखी रहती है और हम बोझ में ही उठते हैं, बोझ में ही खाते हैं, बोझ में ही सारे काम करते हैं। अगर सोचा हुआ कर लें तो बोझ उतर जाए और एक आनंद की अनुभूति हो कि मैंने मेरा होमवर्क कर लिया, मैंने मेरी पढ़ाई कर ली। लेकिन हम कभी भी आनंद में नहीं रहते, हम पिकनिक भी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन भीतर से कभी भी आनंदित नहीं है। सपने में भी वही बोझ, जागृत अवस्था में भी वही बोझ। तो ये बोझ किस चीज का है? ये केवल और केवल सोचने का बोझ है। हम उस बोझ को लिए लिए घूमते रहते, लेकिन अगर हम उसको कर ले बोझ उतर जाए, तो हम भी तो स्टूडेंट है ना, चीज को पकड़े पकड़े घूमते रहते हैं, किसी बहुत अच्छे पुरुषार्थी को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, देखा सोचा तो मैंने भी था, मैं करता नहीं। फिर किसी और के बारे में कुछ अच्छी बात सुनते हैं, अरे पता है मैंने कब से सोच रखी है ये बात, मुझे भी करना है, तब उसे लिए लिए पकड़े पकड़े संगम युग का टाइम पार कर लेते हैं, और जिस दिन उस पकड़ी हुई चीज को रख देते हैं बड़ा आनंद आता है, लाइट हो जाती है, फरिश्ते की तरह उड़ने लगती। तो हम बात को पकड़ के ना रखें, उसको क्रियान्वित कर ले, तब फरिश्ते बनेंगे, तब हल्के बनेंगे। हमारे ऊपर और कोई बोझ नहीं है, लेकिन अपनी ही सोच का बोझ होता है। तो दृढ़ता का अर्थ क्या है? अनकंप्लीट थॉट्स का वजन ना उठाएं, उन्हें साकार कर लें और हल्के हो जाएं। और ये दृढ़ता जब हम बाबा के जीवन को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है। जब बाबा ने इस जीवन की शुरुआत की तो हमने बहुत कहानियां पढ़ी हैं। बाबा के जीवन में बड़ी बड़ी चट्टानें आई, ऐसे ऐसे विरोध आए जिनकी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता, और बहुत लोगों ने बाबा को सजेशन दिया कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बातें बहुत अच्छी हैं, बस बाबा आप जरा सा अपने नियमों में ढील दे दो। जैसे कहती है ना कि भाई ये जो दूध है ना ये निखालस है, हजम नहीं होता, इसमें जरा पानी मिला दो। तो बाबा को कहा कि जरा सी मिलावट कर दो, थोड़े थोड़े नियम लूज कर दो, हम आपके मददगार बन जाएंगे और ये पब्लिक आपका विरोध करना छोड़ देगी। लेकिन बाबा एक बार दृढ़ हुए, चाहे वो कोई भी धारणा थी, प्योरिटी की थी, खानपान की थी, जो भी धारणा थी, बाबा देखो कैसे अटल रही। लोगों ने मारने की धमकी दी, घर जलाया, बहुत कुछ किया। और कमाल की बात तो ये है कि जिन्होंने ऐसा कुछ किया उनके लिए बाबा के मन में कोई दुर्भावना नहीं आई। कहते हैं किसी को माफ कर देना बड़ी बात है, लेकिन उसको भूल जाना उससे भी बड़ी बात। नहीं तो चित्त पे ये भाव रहता है कि देखा मैंने इसको माफ कर दिया, मैं कितना महान, इसने गलती की थी मैंने माफ कर दिया। बाबा ने तो वो बात भी याद नहीं रखी कि मैंने इसको माफ किया या इसने कुछ किया था। तो अपने उसूलों पे बाबा जितने दृढ़ थे, अपने चित्त की स्वच्छता में भी बाबा उतने ही अटल थे। आप सबने पढ़ा होगा, हमने मैगजीन में एक बार एक बाबा के जीवन की घटना डाली थी। एक बड़ौदा का भाई था जिसका नाम था दयाराम छुगानी, सिंधी भाई था। और जब बाबा हैदराबाद में थे तब उसकी आयु बहुत छोटी थी, 17-18 साल का नौजवान था और वो एंटी ओम मंडली का बड़ा सक्रिय सदस्य था। एक अखबार था जिसका नाम था फखर फार, उसमें वो काम करता था। उर्दू का अखबार था, उसमें लेख लिखता था, काम करता था। तो उसमें बाबा के अगेंस्ट लेख लिखा करता था। दूसरा, बाबा के भवन पे उसने पत्थर भी फेंके थे, कांच तोड़े थे। और तीसरा, जब पिकेटिंग हुई उसमें भी वो सहयोगी था। और चौथा, कई लोगों को चुपके चुपके बाबा के अंदर भेजता था, जैसे एक सिलाई करने वाला आता था, सिलाई सिखाने वाला बहनों को, तो उसको सिखा रखा था कि तुम ध्यान से सब चीजें देखना और आके मुझे रिपोर्ट देना। तो इस तरह के काम करता था, वो ये काम करता रहा, यज्ञ आगे बढ़ता रहा। उसके बाद भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, बाबा तो आबू में आ गया और बहुत सिंधी भाई पाकिस्तान से उठ करके कोई बॉम्बे गया, कोई बड़ौदा आया, तो वो बड़ौदा में आ गया। इसी बीच बड़ौदा में हमारी शाखा खुली और वो बड़ौदा की शाखा में आने लगा। तब तक तो उम्र बड़ी हो गई थी और बड़ौदा की शाखा में उसे निश्चय हो गया कि ये काम तो ब्रह्मा का नहीं है, ये तो शिव बाबा का है। और तब बाबा साकार में थे तो बड़ौदा की बहनें उसको यहाँ पांडव भवन में बाबा से मिलाने लिए। तो वो बड़ा डर डर के आया कि बाबा मुझे पहचानेगा, और मैंने तो बाबा का बहुत विरोध किया, मैं क्या करूं, सब लोग बाबा से मिलेंगे, बाबा मुझे पता नहीं क्या कहे। लेकिन जैसे पहले हमने कहा कि बाबा माफ भी करता था और फिर दिल को साफ भी कर लेता था। तो जैसे ही वो आया सामने, तो जैसे बाकी बच्चों को बाबा गोद में लेता था, तो उसको भी बाबा ने बहुत प्यार से गोद में लिया। और बाबा की गोद का तो सुख बड़ा निराला था, सुख मिला, बहुत रोया, बाबा को बताया, माफी मांगी और बाबा मुस्कुराते रहे, बाबा पे कोई असर ही नहीं पड़ा। तो उसने बाबा को कहा कि बाबा मेरा मन करता है कि मैं अपने दोनों हाथों को यहां बाजू से काट करके फेंक दूं। ये वही हाथ जिन्होंने आपके अगेंस्ट लिखा, पत्थर फेंके, मेरे हाथों में जलन होती है। अगर आप एक बार भी उस घटना को याद करके मुझे डांट देते तो मुझे शांति मिल जाती। पर आप तो मुझे प्यार ही प्यार देते हो, जे देख के मुस्कुराते हो, इतना मीठा मुस्कुराते हो, गोद में लेते हो, मेरे हाथों में जलन होती। तो ताकत किस में है? ताकत है मन को स्वच्छ रखने में। मैला मन कमजोर हो जाता है, सामने वाले को बदल नहीं सकता, लेकिन जो अटल है कि सामने वाला कुछ भी करे, मैं अपने चित्त को स्वच्छ रखूंगा, सामने वाले की बात सामने वाला जाने, और मेरा लक्ष्य मेरे समक्ष, मुझे किसी की गंदगी, किसी की भूल, किसी की कमी कमजोरी चित्त पे नहीं रखनी। तो बाबा अटल थे इस बात में, अडिग थे, और बाबा की ये दृढ़ता, ये बाबा की अटल धारणा बच्चों को बदलती गई, कितने एंटी लोगों को बदला। मैं अगर इस एक बात में दृढ़ हो जाऊं, मुझे किसी की कमी कमजोरी गलती चित्त पे नहीं रखनी। बातें आएंगी पर मुझे लेट गो कर देनी है, भूल जानी है, छोड़ देनी है। और दूसरी बात बाबा के जीवन की, जब बाबा समर्पित हुए तो बाबा के कुछ मकान थे जिन्हें अभी बेचा जाना था, तो बाबा ने भाऊ को भेजा कि जाओ बाजार में और पता करके आओ कि कोई मकानों का खरीदार है क्या। तो भाऊ गया और पता किया और पता करके वापस आया, कहा बाबा मकान तो बिक रही है लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि अगर आप एक मास रुक जाएंगे ना तो इन्हीं मकानों का आपको डेढ़ गुना पैसा मिलेगा। तो बाबा ने कहा नहीं, अब भी बेचने हैं, और बाबा ने बिचवा दिए। बाबा ने कहा बच्चे एक महीने बाद तो विनाश हो जाएगा। तो हम विचार करें, मान लो बाबा एक महीने रुक जाता तो कोई और कान में फूंक मारने वाला आ जाता कि बाबा सिर्फ एक महीना रुक जाओ, उसके बाद मैं खरीद लूंगा दुगने में। फिर बाबा एक महीना और रुकता और वो कह देता कि मेरी अमुक प्रॉपर्टी बिकी नहीं, उसका पैसे आने वाला है, वो आ जाएगा ना, फिर मैं नकद खरीद लूंगा हाथों हाथ। और ऐसा होता, हम सब जानते, जो लोगों के कहने से ठहर जाते हैं किसी भी बात में, वो ठहरे ही रहते, खड़े ही रहते, और जो बाबा की श्रीमत को ध्यान में रख के कर लेते हैं वो कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं। और बाबा तब ठहर जाता, तो बाबा ठहर जाता तो हम सब तो ठहरे ही पड़े थे, शायद आज यहां बैठे ना होते। तो बाबा की दृढ़ता ने क्या किया, करना ही है तो हो गया। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, फॉलो फादर। अगर मुझे कोई यज्ञ के लिए काम करना है, कुछ सफल करना है, या कुछ यज्ञ में देना लेना है, या अपना जीवन समर्पित करना है, कुछ भी करना है, तो मैं ठहरता रहूंगा तो ठहर ही जाऊंगा, खड़ा ही रहूंगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, दृढ़ता के साथ छलांग लगाओ, सोचो और करो एक धक्क से। बाबा कहते हैं जो धक्क से बलि चढ़ता है वो बलि स्वीकार होती है, और जो धक से बलि नहीं चढ़ता है वो बलि स्वीकार ही नहीं होती। तो दृढ़ता का मतलब है एक धक से किया, पता ही नहीं पड़ा कब हो गया, नहीं तो हम लटकते ही रह जाते। अब भारत की आजादी की लड़ाई को देख लीजिए, महात्मा गांधी ने 1942 में ऐसे योग आंदोलन चलाया और उसका नारा दिया करो या मरो, और सारा भारत कूद पड़ा। या तो हम करेंगे अर्थात आजादी लेके छोड़ेंगे और या मर मिटेंगे। सारी जेलें भर गई, जेल में जगह ही नहीं बची लोगों को डालने के लिए। और जब उसने दांडी यात्रा शुरू की, कितनी दृढ़ता थी, बूढ़ा था लेकिन चलने में सबसे आगे, इतनी तेज तेज चलता था, पीछे वाले दौड़ते थे। और तब भी उसका नारा था, चाहे मैं कुत्ते की मौत मरूं, चाहे मैं कौवे की मौत मरूं, लेकिन मैं कानून भंग करूंगा। गर्मी में चला, कांटों पे चला, पत्थरों पे चला, भूखा प्यासा चला, अकेला भी चला। और वो दृढ़ता थी, लोग पेड़ों पे चढ़ चढ़ के देखते थे क्योंकि काफिला इतना बड़ा था, गांधी दिखता नहीं था, कद भी थोड़ा ऐसा ही था, पतला दुबला था, कोई डेकोरेशन भी नहीं थी बॉडी की, छिप जाता था भीड़ में। तो लोग पेड़ों पे चढ़ चढ़ देखते थे, वो गांधी आ रहा है, वो गांधी आ रहा है, और लोग भी पीछे लग जाते थे। तो ताकत किसमें है? शरीर में ताकत नहीं थी, पर संकल्प में ताकत थी। तो गांधी ने तो भारत को आजाद करा दिया, अब हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी मंजिल है। पहले हम खुद को तो आजाद करी। पराधीन दुनिया को स्वाधीन कैसे करेंगे? तो हमारी लड़ाई तो अपने आप से है। कहते हैं कि एक किसान के गोदाम में एक चूहा घुस गया, तो बहुत सारा अनाज खराब कर गया, दूसरा चूहा, तीसरा चूहा। तो उसने एक लोहे का मोटा पिंजरा बनवाया और रोज उसमें चूहे फंसे, और वो फेंक दे खुश हो गया। लेकिन एक दिन बहुत मोटा चूहा घुसा, मोटे चूहे को बड़ा ख्याल आया, मैं तो बंधन में ही आ गया, तो उछल कूद बहुत मचाई और पिंजरा थोड़ा खिसका, तो उसको लगा कि मैं इसे खिसकते खिसकते बाहर ले जा सकता हूं, गोदाम से बाहर जंगल में ले गए। उसे बड़ी खुशी मिली कि देखा मैं गोदाम से बाहर आ गया। गोदाम से तो बाहर आ गया लेकिन पिंजरे में तो अब भी है। तो हम सब कई गोदामों से बाहर आ गए लेकिन एक पिंजरे में अभी भी है। वो पिंजरा कौन सा है? खुद के संस्कारों का, खुद के स्वभाव का, खुद की आदतों का। गोदाम तो बहुत बड़ा था, दिखता था, पर ये पिंजरा बहुत छोटा है, दिखता नहीं। तो इस पिंजरे से बाहर कैसे आएंगे? पहले हमें रियलाइज करना है कि ये मेरी कमी है, पहले चेकिंग करनी है और फिर अपने को चेंज करना है। डॉक्टर भी पहले डायग्नोस करता है, उसके बाद दवा देता है। बिना डायग्नोस के दवा दे दे कई बार बहुत गलत परिणाम निकलते। तो मैं पेशेंट भी खुद हूं और डॉक्टर भी खुद। बाबा कहते हैं सोचने और करने में अंतर क्यों रह जाता है? इसका कारण है दो गुणों की कमी। एक है सर्वंश त्यागी और दूसरा है बेहद का वैरागी। अंश सहित त्याग, जैसे हम कहते हमने देह अभिमान का त्याग किया, देह के संबंधों का त्याग किया, देह के पदार्थों का त्याग किया, देह की दुनिया का त्याग किया, त्याग तो किया लेकिन कहीं इनके अंश बाकी तो नहीं है। और बाबा कहते हैं अंश से वंश पैदा हो जाता है, देहबान का अंश है, देह के संबंधों में आकर्षण का अंश है, कुछ संबंधों से अनासक्त हो गई। जैसे माताओं से पूछती हैं बाबा को क्या क्या बनाया, पति बना लिया, बेटा भी बना लिया, भाई भी बना लिया, है ना, सब कुछ बना लिया, लेकिन कई बार माताएं पोत्रा बनाना भूल जाती हैं, और सबसे ज्यादा मोह पोत्रे में रह जाता। तो अंश रह गया और उस अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो सर्वंश त्यागी, और इसके लिए बाबा ने कहा सारी दिन की दिनचर्या में दो चीजें हमारे सामने बहुत रहती हैं, उन दो चीजों के हम बीच में ही रहते दिन भर। एक है व्यक्ति और दूसरा है वस्तु और वैभव। तो बाबा ने कहा व्यक्ति के प्रति आत्मिक भाव, और वस्तुओं के प्रति अनासक्त भाव। व्यक्ति सारा दिन दिखेंगे, ऑफिस में व्यक्ति, घर में व्यक्ति, सड़कों पे व्यक्ति, खेतों में व्यक्ति, कहीं भी आप जाएंगे व्यक्ति तो होंगे। तो क्या करें, व्यक्तियों को छोड़ के भागना नहीं है। व्यक्ति के प्रति आत्मिक भाव, ये है सर्वंश त्यागी, नेचुरल आदत आत्मा देखने की। कहते हैं महान लोगों की नजर मस्तक पे जाती है और साधारण लोगों की नजर मस्तक से नीचे जाती है, दोनों के अपने अपने एरिए। साधारण लोग जब किसी को देखते हैं तो क्या देखते हैं भाई, आंख नाक कान मुंह, और ये सारे के सारे बंधन में बांधने वाले द्वार। तो वो बंद जाते हैं इनके साथ, उसकी आंख सुंदर, उसका नाक सुंदर, उसका कान सुंदर, मुंह सुंदर, ये साधारण आदमी की निशानी, बंधा रहता है और वो सजाता भी इन्हीं को है ताकि दूसरे भी बंध जाएं मेरे साथ और मैं भी बंध जाऊं। तो मनुष्य मनुष्य की ऑर्गन्स के साथ बंधा रहता है, श्रृंगार भी इन्हीं का करता है। वैसे तो ये ऑर्गन्स उसके नौकर माने जाते हैं। तो देखो श्रृंगार किनका करता है, नौकरों का। आधुनिक युग में नौकरों को सजाया जाता है और मालिक बेरंगा, मालिक दाग धब्बों वाला, बिना धुला बिना सजा पड़ा रहता है। इसको कहती हैं उल्टी गंगा, गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे यूं चल रही है। और बाबा ने हम बच्चों को सीधा कर दिया, देखो भी आत्मा को, दिखाओ भी आत्मा। अगर कोई मुझे देखे तो मेरी आत्मा को मुझे देखे, मेरे नौकरों को ना देखे। इसलिए मैं नौकरों की ऐसी सजावट ना करूं जो लोगों की नजर उन्हीं में अटक जाए। मैं मालिक इतना सज के बैठूं कि सीधी नजर लोगों की मुझ मालिक पे जाए। आजकल तो होता क्या, हम लोग किसी के घर में जाते हैं ना, तो पता तो होता नहीं है, घर में माइयां होती हैं, किसी के घर में धोबी होती हैं, वो ऐसी सजी होती है, हमको भ्रम होता है यही सिठानी, हम तो उसी को नमस्ते कर देते हैं। अरे बाद में पता पड़ता है तो नौकरानी है, सिठानी तो अंदर, तब तो कई नौकरी नौकरानियों को हम नमस्ते कर चुके होते, देखो कैसा जमाना आया, औरों की नौकरानी क्या, अब शांतिवन और पांडव भवन की नौकरानियां देख लो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो सारा दिन में क्या देखना है, मस्तक। अगर मुझे सर्वंश त्यागी बनना है तो मस्तक देखने का अभ्यास करना है। और वस्तुओं के प्रति अनासक्त भाव, बाबा ने कहा था जो आसक्ति वाला होगा ना उसके लिए चीजें चुंबक का काम करेंगी, उसको ऐसे खींचेंगी जैसे चुंबक सुई को खींचती है, खींचेंगी अपने में अटकाएंगी, अपने से चिपकाएंगी, उसको पता ही नहीं पड़ेगा किस चीज ने मुझे, वो खड़ा हो जाएगा चीज को देख के, ठिठक जाएगा। और जो अनासक्त होगा उसका रास्ता क्लियर और क्लीन होगा। और दूसरी चीज बेहद का वैरागी, बाबा ने हम बच्चों को बेहद का वैरागी बनाया। दुनिया में हद के वैरागी बहुत सन्यासी हैं, उन सन्यासियों में एक सन्यासी का जिक्र आता है जिसका नाम था भर्तृहरि। तो भर्तृहरि की कहानी सुनी आपने, उसको धोखा मिला अपनी पत्नी से, पत्नी ने धोखा दिया, आप सब कहानी जानते, धोखा मिला तो उसने सन्यास ले लिया, था तो राजा, घर छोड़ दिया और गुरु ने जो सिखाया तो गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु ने पहली पहली आज्ञा दी कि अपनी पत्नी से भिक्षा मांग के लाओ और उसके मुख से बेटा निकलना चाहिए, यूं ही भिक्षा ना दे, वो ये कह के भिक्षा दे कि ले पुत्र और तू उसे मां बोल, तो इस परीक्षा में भी पास हो गया, बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन दो चीजें हैं ना, संबंध और वैभव, वैभव से तो धोखा खाया ही नहीं था, धन दौलत ने तो दुख दिया ही नहीं था, संबंधों से तो विरक्ति आ गई, लेकिन धन सोना चांदी हीरे मोती से विरक्ति नहीं आई थी। तो एक चांदनी रात में जा रहा था और जाते जाते रास्ते में कोई चमकती चीज दिखाई दी, महल छोड़ दिया, खजाना छोड़ दिया, कीमती वस्त्र छोड़ दिए, लेकिन जैसे ही वो चमकती चीज दिखी तो एकदम क्या हुआ, अरे लगता है कोई हीरा पड़ा है, कोई मोती पड़ा है, और वापस मुड़ा और वापस मुड़ के उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बहुत गंदी सी चीज थी, उससे हाथ भी गंदे हो गए, किसी ने पान की पीक थूक रखी थी, वो रात में चांदनी रात में चमक रही थी। तो जब हाथ गंदे हो गए तो उसने कहा, अरे भर्तृहरि तेरे को अभी तक अकल नहीं आई, एक धोखा खाया, मैल छोड़ा, तू कब तक धोखे खाता रहेगा, अभी तक तेरी आसक्ति नहीं गई, तूने मैल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और तू फिर हीरे मोती के पीछे चला गया। उसने अपने आप को जैसे जैसे समझाया। तो बेहद का वैरागी अर्थात किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, चाहे उसने धोखा दिया या नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि सब चीजें छूटने वाली हैं, सब जाने वाली हैं, और जाने का कोई समय निश्चित नहीं, कभी भी जा सकती। चीजें ना जाएं तो मैं तो जा सकता हूं कभी भी, मेरी तो कोई अवधि नहीं। तो जब हम इन दो बातों में दृढ़, सर्वंश त्यागी और बेहद के वैरागी, तो बहुत सरलता से दृढ़ता आ जाती है, नहीं तो वो आ सकती फिर दृढ़ता से हटा देती। आकर्षण ममत्व एक बार दृढ़ होती है फिर फिसल जाती है। और दूसरा बाबा ने कहा दो शक्तियां चाहिए, एक रूलिंग पावर और दूसरी कंट्रोलिंग पावर। मन के ऊपर मेरा राज्य हो, ये फिसलने लगे और मैं इसे फिर पकड़ूं। जिसमें ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होती है वो दृढ़ रहता है, बार बार देखता है कहां गया, मैंने संकल्प क्या किया था और ये फिर ढीला हो गया। जैसे गाड़ी चलाने वाला ध्यान रखता है, मैं इसे कंक्रीट की सड़क पे चला रहा हूं और फिर नीचे उतर गई, फिर लाएगा सड़क पे, फिर लाएगा, फिर जाएगी गड्ढे में, घास में, झाड़ियों में, फिर लाएगा। और ऐसे करते करते एक दिन वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ये मन भी ऐसे ही, मैं इसे मंजिल की ओर ले जाता हूं और ये फिर फिसल जाता है, फिर फिसल जाता है। हमारी दादी रतन मोहिनी ने एक बार क्लास कराया था तो कहा था कि सारा दिन में मन को तो यूज करो ही मत, बुद्धि को यूज करो। और इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मम्मा कहती थी मैं अपने मन को परम धाम में सुला देती हूँ और उसको कहती हूँ जब जरूरत पड़ेगी ना उठा के ले आऊंगी, तब तक तुम सोए रहो। अर्थात आप मन को ढीला और खुला छोड़ोगे तो वो क्या करेगा, कहीं उलझेगा, इधर उलझेगा, उधर उलझेगा, इसलिए उसे एक जगह सुला दो। और इसलिए वो कहा करती थी कि मैं जब क्लास करानी हो तब नीचे आती हूं और तब इन नेत्रों को देखने के लिए यूज करती हूं, नहीं तो मैं देखती नहीं। बाबा हमें भी कहते हैं बच्चे जो योगी होता है वो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता और बोलते हुए भी जैसे नहीं बोलता। अर्थात इंद्रियों का प्रयोग कम से कम करता है और इंद्रियों को उलझने नहीं देता। आप ज्यादा यूज करोगे तो कहीं ना कहीं उलझ ही जाएंगे, ज्यादा देखोगे कोई ना कोई चीज आपको आकर्षित कर लेगी, ज्यादा सुनोगे। और ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आए कैसी, तो चलिए हम एक बार ये याद करते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए पहली बार, पहले पहले आए तो हमारे साथ क्या क्या आया था, विचार कीजिए क्या क्या आया था। ये शरीर साथ था, शरीर के संबंधी, शरीर के पदार्थ, हमारे साथ केवल तीन चीजें आई थी, नंबर एक मन, नंबर दो बुद्धि, नंबर तीन संस्कार। तो हमारे पुराने मित्र कौन है, पुराने से पुराने, पुराने से पुराने, अति पुराने मित्र कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, सर्वेंट कह लीजिए, मंत्री और संतरी कह लीजिए। अगर आप मन को मंत्री कहें और बुद्धि को अगर राजगुरु कहें और संस्कारों को अगर सेना कहें, जो मर्जी कह लीजिए, तो आत्मा राजा अपने महल से निकला, उसका महल तो परम धाम ही है, उसका पिता जहां बैठा है वो उसका घर है, उसका महल है, वहां से वो निकला। तो कोई भी राजकुमार अकेला नहीं निकलता, साथियों के साथ निकलता है ना। तो ये तीन हमें साथी मिले, इनके साथ हमने अपनी यात्रा शुरू की। और पहला पड़ाव डाला। पहला पड़ाव कौन सा था? सतयुग, अर्थात पहला जन्म। तो हमने पहला पड़ाव डाला। अब जब कोई पड़ाव डालता है और उसके साथ केवल तीन ही साथी हों तो काम थोड़े चलता है। पड़ाव डालेगा, रहेगा वहां लंबे समय तक, तो लोकल लोगों से जान पहचान चाहिए, लोकल लोगों से कुछ ना कुछ सहयोग चाहिए। तो पहला पड़ाव डालते ही उसे कुछ लोकल साथी सेवाधारी मिलते हैं। वो कौन है? धरती पे उतरते कौन है? वो पांच तत्व और पांच तत्वों से बना शरीर। ये ऊपर तो था ही नहीं, नीचे आए, पहला पड़ाव डाला तो ये मिला। और ये लोकल सेवाधारी कह लीजिए, आंख, कान, नाक, इस पर्यावरण को महसूस करना, देखना, सुनना, ये काम तो ये लोकल करते हैं। पहले तो चीज इन तक आती है, भीतर वालों के पास तो बाद में पहुंचती। लेकिन एक सफल राजा किसे कहेंगे? जो अपने पुराने नौकरों से बहुत अच्छा बना के रखे और नए वालों से पुरानों के माध्यम से मिले, ये होता है ना गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आप पुराने को इग्नोर कर दो और नए वालों से मेल मिलाप कर लो तो पुराना भी क्या सोचेगा, इन नए वालों को मैं अपनी तरफ खींचूं। और अगर आप पुरानों से मिलजुल के रहते हो तो फेथफुल रहते। तो आत्मा ने क्या गलती की? पुरानों को इग्नोर कर दिया और वो धीरे धीरे डायरेक्ट नयों से जुड़ गई। आंख से जुड़ी, कान से जुड़ी, जबान से जुड़ी, हाथों से जुड़ी, और ये जो तीनों थे ना, ये इग्नोर हो गए। इग्नोर हो गई, कमजोर हो गई, और ये भी इन नयों को उकसाने लगे तो इसकी कंट्रोलिंग पावर खत्म हो गई। ना तो पुराने साथियों पे ये ठीक से कंट्रोल कर पाई और ना नयों पे। और ये नए तो हर पड़ाव में बदल गए। आपने पहला पड़ाव डाला अहमदाबाद में तो लोकल लोग वहां के आपकी सेवा में आए। आप अपना तंबू समेट करके सूरत में चले गए तो अहमदाबाद वाले थोड़े आपके साथ जाएंगे, वहां नए नौकर मिलेंगे। तो एक शरीर आपको यहां मिला, दूसरा दूसरी जगह मिले, तो बदलते गए। लेकिन पुराने कौन से थे? मन, बुद्धि, संस्कार, जो ना कभी बदले ना कभी छूटे। तो मेरा अधिक अटेंशन किस पे चाहिए? मेरा मन क्या कर रहा है, कहाँ गया, क्यों गया? मुझे मेरी जजमेंट पे ध्यान रखना है। मैंने ठीक जज किया? किसी संस्कार के वशीभूतों के तो नहीं किया? मुझे मेरे संस्कारों पे ध्यान देना है। किस किस का कुसंग लगा? मेरे मूल वाले कौन से थे? क्या ये मेरा मूल संस्कार प्ले हुआ या इसमें कोई मिलावट हुई? तो ये भी खुश रहते और मेरी भी इनके ऊपर अच्छी हैंडलिंग रहती, रूलिंग रहती, कंट्रोलिंग रहती। और जब मैं उसमें लूज हो गई तो क्या हुआ? मेरे में ना दृढ़ता रही, ना दृढ़ता के परिणाम रूप मुझे सफलता मिली। इंद्रियों का क्या है? देखिए, ये तो एक विषय से दूसरे विषय पे एक पल में खिसक जाती है और इनको उकसाता है मन। अगर आपका मन आपके वश में है तो आंख की कोई ताकत नहीं कि वो किसी विषय को घूरे। ये मन पीछे बैठ के कहता है इसे देखती ही रहना, हटना नहीं। तो इसको एक बल मिल जाता है और आत्मा कहती है यहां से हटो, ये गलत है, तो भी नहीं मानती क्योंकि मन चिपका हुआ है। तो आत्मा पहले मन को हटाए ना, मन को विश्वास में लेना। तो रूलिंग पावर कब आएगी, कंट्रोलिंग पावर कब आएगी? जब आप बार बार अपने इन पुराने साथियों के ऊपर ध्यान देंगे। इसलिए देखिए बाबा की जितनी भी मुरलियां चली हैं, सब में बाबा ने मन के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया। बच्चे, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, अपने संकल्प को चेक करो, संकल्प को मोड़ो, संकल्प को बचाओ। संकल्प व्यर्थ गया तो आपकी सारी शक्ति चली जाएगी। आंख पे ध्यान खिंचवाया पर कम, कहा कि आंख धोखा देती है, लेकिन आंख के धोखे से बचाने वाली भी संकल्प शक्ति है। तो जब भी एकांत में बैठो, अपने तीनों साथियों को पुचकारो, उनको प्यार करो, उनका हालचाल पूछो, उनको देखो। वैसे भी कहते हैं जो परिवर्तन होता है वो इनसाइड आउट होता है, भीतर करेंगे तो बाहर आएगा। पेड़ का भी अगर कुछ करना है तो पहले बीज से शुरुआत करते हैं। तो आत्मा बीज है और ये तीनों इस बीज की शक्तियां कहिए, इसके इंग्रेडिएंट कह लीजिए, तो हमें इन्हें सशक्त करना है। और लास्ट में मैं आपको स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना सुना देती हूँ जो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायी है। स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे स्वामी राम तीर्थ, बहुत करीब घर के थे, बहुत मेहनत से पढ़ाई पढ़ी थी और जब पढ़ लिख करके डिग्री मिल गई तो उन्हें लाहौर के कॉलेज में लेक्चररशिप मिली। जब उनकी प्रमोशन होने लगी, कुछ दिन तो लेक्चररशिप की प्रमोशन होने लगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई सिर्फ 1000-2000 कमाने के लिए नहीं की, मैंने ये पढ़ाई दुनिया का कल्याण करने के लिए की, इसलिए मुझे जॉब नहीं करनी। और उन्होंने जॉब छोड़ दी, सन्यासी बन गए। अपने आप को वो आत्मा समझते थे, बहुत पक्का पाठ था और उस जमाने में सारे लोग सन्यासियों की कदर करते हो ऐसा भी नहीं था, गालियां देने वाले भी बहुत थे, उल्टा बोलने वाले भी बहुत थे। तो अगर कभी कोई विरोध कर देता था, गाली दे देते थे, तो घर में आके अपने आप को कहता था आज राम ने बहुत गाली खाई और मुझे बहुत मजा आया। अर्थात खुद को साक्षी होके देखता था, आत्मा समझ के बोलता था कि आज राम ने बहुत गाली खाई। राम तो ये शरीर है, लोग गाली तो इस शरीर को देख के देते हैं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे थोड़े देते, ऐसी उनकी धारणा थी। तो एक बार वो रास्ते में जा रहे थे और जाते जाते हमारी नजर पड़ जाती है, ऐसे उन्होंने देखा कि एक महिला एक छत पे कपड़े सुखा रही है। तो अनायास नजर पड़ गई, महिला छत पे कपड़े सुखा रही। फिर चलते गए और थोड़े चले होंगे 100 कदम, उन्होंने पीछे मुड़ करके फिर देखा उसी छत की तरफ। और जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने झट अपना कान पकड़ा, उन्होंने कहा राम तू सन्यासी है, तू भगवे कपड़े पहन के लोगों को धोखा देता है, एक बार तेरी नजर पड़ी वो तो तेरा दोष नहीं है, पर तूने पीछे मुड़ के क्यों देखा, ये तेरा दोष है, ये तेरा आकर्षण है, तू सन्यासी कहलाने लायक नहीं है, तू झूठा है, तू धोखेबाज है और इसकी तेरे को सजा मिलनी चाहिए, वापस चल। उसी रास्ते से वो वापस मुड़ा, घर आया और उसने अपने आप को 7 दिन कमरे में बंद रखा बिना खाए पी। जब तक तेरा ये संस्कार नहीं मिटेगा तुझे रोटी नहीं मिलेगी, बदल अपने आप, इसको कहते हैं दृढ़ता। जरा सी हमारी नजर फिसली, वाणी फिसली और मैंने अपने आप को सजा दी। जीवन में आगे बढ़ने का एक सूत्र है, दूसरों के लिए नम्र बनिए, दूसरे की गलती को माफ कर दीजिए और अपने लिए धर्मराज बनिए। अपनी छोटी सी गलती को भी कभी भी माफ मत कीजिए। اور دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیجیے. تو دردھتا کا یہی فارمولا ہے. اوم شانتی.
بہت بہت خوب, بہت بہت تھینکس آدرنیہ ارملا بہن جی, آپ کو اویکت باپ دادا کی وہ بات بھی یاد دلا دی کہ جب بابا کہتے ہیں پرتیگیائیں تو بہت کرتے ہیں بچے, اور فائل میں پرتیگیاؤں کے کاغذ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اسی لیے اب وہ فائل تو موٹی ہوتی جا رہی ہے, لیکن آج جیسے ارملا بہن جی نے کلاس کرائی ہے لگتا ہے وہ فائل چھوٹی ہو جائے گی, کیونکہ ابھی صرف سوچنے کی پرتیجیا کرنے کی طاقت تھی, ابھی پریکٹیکل کرنے کی بھی طاقت آ گئی ہے نا. جس دن امرت ویلا نہ کریں اس دن کیا کرنا چاہیے, کیا سزا دیں گے؟ ہاں کم سے کم یہ تو دے ہی سکتے ہیں, ناشتہ نہ کریں, دوپہر کا کھانا نہ کھائیں, جتنی بار پیٹ میں چوہے کودیں گے اتنی بار یاد آئے گا آج امرت ویلا نہیں کیا تھا. تو اسی لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے اس طرح کی بات سوچ کر رکھیں کہ اس دن سارا دن 8 گھنٹہ یوگ کریں, یا بار بار زیادہ مرلی پڑھیں, لکھیں, چنتن زیادہ کریں. تو اس طرح کی یہ باتیں جو آپ نے بہت اچھے اچھے ادھارن دے کر ہمیں سمجھائی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ.